हाँ पंडित जी आप आ गए। हाँ पंडित जी आप आ गए।
हाँ जी मैं आ गया।
हाँ पंडित जी शुरू करते हैं।
ठीक है मंगलाचरण चालू करते हैं।
जी
तू सब से ओम चल मणो वम गदिम पते वो चामी समय पाहुड़ो मैं नमो सुद के बली भणिदम नमा समय साराए वानु आचकाते चित्त भावाय भावाय सर्व भाव सच्चिदे। ये समय पाहुड़ नाम का ग्रंथ है भगवत कुंद कुंदाचार्य देव ने लगभग आज से 2000 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना की है। इसका तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार समापन की ओर है। ये इसमें अपन ने कल 109 नंबर का कलश पढ़ा था और 110 नंबर का कलश प्रारंभ किया था, तो आज मैं उस 110 नंबर के कलश को आरंभ फिर से कर रहा हूँ। उसकी उत्थानी का में लिखा है कि जीव को अब आशंका उत्पन्न होती है कि जब तक अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के कर्म का उदय रहता है तब तक मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है, तब तक वो मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है उसका सम्यक दर्शन और यानी ज्ञान धारा और कर्म और ज्ञान ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। इसके समाधान करने के लिए कभी एक साथ रह सकते हैं ये समाधान करने के लिए गाथा नंबर 110 आती और गाथा नंबर 110 को पढ़ते शार्दूल विक्रीडित छंद है उसका। यावत् पाकमुपैति कर्म विरतिर् ज्ञानस्य सम्यग् न च कर्म अज्ञान समुच्चयोऽपि बेहतास् तावन्न काचित् क्षिति क्षति किन्तु अत्रापि समुल्ल सत्यवशतो यत् कर्म बन्धाय तन् मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः। ये कलश है अपना, ये कलश इसके जवाब में लिखा गया है कि कर्म और ज्ञान दोनों सम्यक दृष्टि के तो कर्म का उदय रहता है, फिर कर्म और ज्ञान दोनों धाराएं एक साथ कैसे चल सकती हैं उसका समाधान कर रहे। इसमें ये लिखा है कि यावत माने जब तक कि पाक मुपैति जब तक कर्म भली भांति पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता और कर्म विरति ज्ञानस्य सम्यग् नशा कर्मों से विरक्ति होना की धारा और ज्ञान की धारा ये दोनों जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होती हैं तब तक ज्ञान का और कर्म का एक साथ रहना कर्म का और ज्ञान का एकत्रित बना शास्त्र में तो कहा है और उसके एकत्रित रहने में कोई विरोध नहीं है क्षति नहीं है। किंतु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए, क्या विशेष जानना चाहिए कि आत्मा अवसपने जो कर्म प्रकट करता है ये अवसपना क्या कहलाता है, पराधीनपने अपनी चार्तमोल कर्म के उदय की बलजोरी से ये अवसपना है, स्वयं में स्वयं स्थिर हो सकने का पुरुषार्थ न हो सकने के कारण इस तरह से वो अवसपने से जो भी कर्म प्रकट होता है वह तो बंध का कारण है और जो परम ज्ञान है आत्मा का जो ज्ञान की धारा चल रही है कि मैं तो ज्ञायक मात्र हूँ ये ज्ञान की धारा कहलाती है और उसी के साथ साथ कर्म का उदय चल रहा है और कर्म के उदय से जो कुछ हो रहा है वो कर्म धारा कहलाती है। ये दोनों धाराएं एक साथ चल सकती हैं, जो कि एक साथ चल सकती हैं वह तो बंध का कारण है, वो जो कर्म धारा है वो बंध का कारण है, परंतु जो परम ज्ञान है वो तो एक ही मोक्ष का कारण है। यानी ज्ञान धारा मोक्ष का ही कार्य करती रहती है और कर्म धारा बंध का ही कार्य करती रहती है, दोनों धाराएं आत्मा में साधक अवस्था में एक साथ चलती हैं। इतना जरूर है कि दोनों धाराओं में एक साथ चलने पर भी ज्ञान धारा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और कर्म धारा धीरे धीरे घटती जाती है। और एक समय ये आता है कि ज्ञान धारा ही परिपूर्ण चलती है और कर्म धारा का अभाव हो जाता है। कर्म धारा का अभाव होता है, वहाँ आत्मा वितरागी हो जाता है। दसवें गुण स्थान तक कर्म धारा और ज्ञान धारा एक साथ चलती है। और शुरुआत कर्म धारा ज्ञान धारा की वास्तव में देखा जाए तो छठे सातवें गुण स्थान से होती, लेकिन आगे गांगे के गुण स्थान में ज्यों ज्यों आत्मा बढ़ता है ज्ञान धारा बढ़ती चली जाती है, प्रबल होती जाती है, और जो कर्म धारा है वो क्षीण होती चली जाती है, निर्जरित होती चली जाती है। और दसवें गुण स्थान तक ये परिस्थिति बनती है, ग्यारहवें गुण स्थान में कर्म धारा उपशमित हो जाती है और ज्ञान धारा परिपूर्ण प्रकट होती है। और ये कर्म अगर वो जीव छायक सम्यक दृष्टि हो और छपक श्रेणी चल रहा हो तो फिर बारहवें गुण स्थान में जाने के बाद वो वीतरागी हुआ अब कभी भी गिरेगा नहीं, ग्यारहवां वाला उपशम श्रेणी वाला नियम से गिरता है। और छायक सम्यक दृष्टि है तो वो गिरने वाले को चौथे ही तक लाएगी, चौथे से नीचे नहीं जा सकता। और छायक की जगह अगर उपशम सम्यक दृष्टि है और उसको कर्म धारा के आधार वो अंदर ही अंदर ज्ञान धारा को बढ़ाता है और उपशम सम्यक उपशम दशा में पहुंच जाता है, मोह का उपशम कर देता है, तो ऐसा जीव का मोह का उपशम अंतर मुहूर्त तक से ज्यादा नहीं टिकता। और फिर ग्यारहवें गुण स्थान से गिरकर उसके अगर प्रतिख्यानावरण का उदय आता है तो छठवें गुण स्थान में आता है, अप्रतिख्यानावरण का उदय आता है तो पांचवें गुण स्थान में आता है, और तुम्हारे से नहीं संज्वलन का तीव्र उदय आता है। ध्यान से फिर से सुनिए, उस आत्मा के जो उपशम श्रेणी चढ़कर ग्यारहवें गुण स्थान में पहुंचा है, अगर उस जीव के संज्वलन कषाय का तीव्र उदय आता है तो वो गिर करके छठे गुण स्थान में आता है, और यदि प्रतिख्यानावरण का उदय आता है तो गिर करके पांचवें गुण स्थान में आता है, अप्रतिख्यानावरण का उदय आता है तो गिरकर चौथे गुण स्थान में आता है, और छायक सम्यक दृष्टि है तो अब इससे नीचे नहीं जा सकता, और यदि उपशम सम्यक दृष्टि है तो और भी नीचे जाने के चांस हैं। मिश्र प्रकृति उदय में आएगी, तीसरे गुण स्थान में आएगा, और अनंतानुबंधी चौकड़ी में से कोई एक भी उदय में आएगी, अनंतानुबंधी क्रोध या मान या माया या लोभ इनमें से कोई एक उदय में आएगी तो सम्यक्त की विराधना करके दूसरे गुण स्थान माने शासादन गुण स्थान में आता है, और इसके बाद नियम से मिथ्यात्व का उदय आता है और जीव प्रथम गुण स्थान में चला जाता है। ग्यारहवें से गिरकर ये दो अवस्थाएं बनती हैं, छायक सम्यक दृष्टि चौथे तक गिरता है और फिर उठ करके अंगली फिर से वो चढ़ता है। उग्र पुरुषार्थ करेगा तो कर्म चार्त मोहिनी का क्षय करेगा, और मंद पुरुषार्थ करेगा तो चार्त मोहिनी का उपशम करेगा, उपशम करेगा वो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला कहलाता है, और क्षय करके आगे बढ़ता जाता है वो छपक श्रेणी वाला कहलाता है। तो इस तरह की जो परंपरा दसवें गुण स्थान तक चलती है, ग्यारहवें में वो शांत हो जाती है, बारहवें में वो क्षय हो जाती है, और वहाँ पर ज्ञान धारा अकेली रह जाती है, और ये जो कर्म धारा थी वो रुकती है। लेकिन एक एक प्रकार का जो अज्ञान छयोपशम वाला बैठा है, अभी छयोपशम जन अज्ञान की तो अभी बंद माने कर्मों का आश्रय तो होता है लेकिन बंद नहीं होता, क्यों? बंद का कारण राग होता है, और दसवें गुण स्थान के अंत में राग समाप्त होके ग्यारहवें में आए तो वीतराग होता है, अथवा बारहवें में जाए तो भी वीतराग होता है। इसलिए ग्यारहवें बारहवें गुण स्थान में संसार का आश्रय वाला सांप्रदायिक आश्रय नहीं होता, लेकिन वहां पर भी एक आश्रय अवश्य चलता है, वो कहलाता है ईरियापथ आश्रय। ईरियापथ का अर्थ ये होता है कि जो आश्रय आवे और जावे, रुके नहीं, बंध को प्राप्त ना हो, उसको ईरियापथ कहते। जैसे आदमी रास्ता चलता है और रास्ता चलने में रास्ता आ रहा है, अंगला अंगला रास्ता आता है, लेकिन आने के बाद फिर यह इसका कदम दूसरा बढ़ता है तो वो आया और चला गया। तो जैसे गमन करते हुए व्यक्ति के जमीन आती है और चली जाती है, आगे आगे जमीन आती चलती है और पीछे पीछे की आगे पीछे रह जाती है। इस तरह से कर्म आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए आते हैं उनका नाम आश्रव है और चले जाते हैं तो वे ईर्ष्या पथ आश्रव वाले कर्म कहलाते, बंधन को प्राप्त नहीं होते। ऐसी साधक अवस्था में ये कर्म धारा छठे गुण स्थान से लेकर दसवें गुण स्थान तक चलती है, मगर वो कर्म धारा झीनी होती चली जाती है, कमजोर होती जाती है, इसलिए उससे तो कर्म बंध घटता चला जाता है। और ये ज्ञान धारा प्रबल होती चली जाती है तो इससे निर्जरा ज्यादा होती है, और दसवें गुण स्थान में आश्रय रुक जाता है, और ये ज्ञान धारा के बल से जो पूर्व का बंध बैठा है उसका निर्जरा हो जाती है और आत्मा वितरागी बन जाता है, और अज्ञान का क्षय करके आत्मा केवल ज्ञानी सर्वज्ञ अरहंत अवस्था वाला बन जाता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं साधक अवस्था में ज्ञान धारा भी चलती है, कर्म धारा भी चलती है, और उनके चलने में कोई विरोध नहीं, दोनों धाराएं चल सकती। जैसे मैंने कल कहा था, एक दृष्टांत कहा था कि एक ही नदी में दो धाराएं चलती, और तो ठीक है गंगा और यमुना नदी का जहाँ संगम है, वे दोनों संगम में यमुना नदी का पानी का वर्ण काला है और गंगा नदी का बिल्कुल वाइट है, ये वाइट और काले के रूप में पूरी नदी बहती है, लेकिन वो धारा अलग दिखती है काली वाली, और बिल्कुल स्वच्छ वाली धारा अलग दिखती है। इसी तरह से आत्मा में साधना की अवस्था में साधक दशा में दो धाराएं चलती, एक धारा ज्ञान धारा कहलाती है और एक धारा कर्म धारा कहलाती है। कर्म धारा बंद कराती है सो बंद, और ज्ञान धारा बंद से छोड़ाती है। अब यहाँ ज्ञान धारा प्रबल होती चली जाती है तो वह जितना बंद होता उससे ज्यादा ही निर्जरा करती है, और दसवें गुण स्थान में फिर बंद होता ही नहीं है अंत में, तो फिर ये परिपूर्ण निर्जरा कर देती है और आत्मा को बंद रहित करती है धीरे से। इस तरह से ये कर्म धारा में और ज्ञान धारा में कोई विरोध नहीं है, दोनों चलती हैं, अंतर इतना है ज्ञान धारा मोक्ष का कारण होती है, कर्म धारा बंध का कारण होती है। एक कलश में इस तरह समाधान किया, और इसी का जब भावार्थ लिखा तो इन्होंने पंडित जयचंद जी ने ऐसा लिखा उसका भावार्थ, जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता। ये यथाख्यात चारित्र क्या कहलाता है? यथाख्यात माने जैसा आत्मा का स्वरूप कहा, कषाय रहित आत्मा का स्वरूप कहा, अज्ञान क्षयोपशम रूप अज्ञान रहित आत्मा का स्वरूप कहा, तो जब तक ऐसा स्वरूप वो प्रकट नहीं हो जाता है तब तक तो वो यथाख्यात चारित्र नाम नहीं पाता है, देश चारित्र सकल चारित्र ये नाम पाता है, लेकिन जहाँ कषाय रहित अवस्था होती है उस चारित्र का नाम यथाख्यात चारित्र है, तो आत्मा का स्वरूप वहां प्रकट हो जाता है। जब तक यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता है तब तक सम्यक दृष्टि जीव के चौथे से लेकर के दसवें गुण स्थान तक दो धाराएं रहती हैं। ये दो धाराओं में एक धारा का नाम शुभ अशुभ धारा है जो कि कर्म धारा है, और दूसरी धारा का नाम ज्ञान धारा है। ये दोनों धाराएं उनके चलती हैं, उन दोनों के एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है। जैसे मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान के परस्पर विरोध है, ऐसा विरोध कर्म धारा और ज्ञान धारा में नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्म अपना काम करता है और ज्ञान अपना काम करता है, दोनों अपने अपने काम करते हैं। जितने अंश में शुभ अशुभ कर्म धारा चलती है उतने अंश में कर्म बंद होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा चलती है उतने अंश में कर्म का नाश होता जाता है। विषय कषाय के विकल्प और व्रत नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तब तक ही कर्म का बंध का कारण है। शुद्ध परिणति रूप जब ज्ञान धारा होती है प्रकट होती है तो वह ज्ञान धारा तो एकमात्र मोक्ष का कारण है, कर्म धारा एकमात्र बंध का कारण है, ज्ञान धारा एकमात्र मोक्ष का कारण है। अब यहाँ एक नया कलश में ये बात कहने वाले हैं, ये तो पहला कलश हुआ अपना 110वां, अभी 111वें नंबर के कलश में बेहद सावधान किया है। बेहद सावधान किया है माने इस कलश में अगर कोई जीव निश्चयवासी बनता है उसे भी सावधान किया है, और निश्चयवासी ना बने व्यवहारावासी बन जाए तो उसको भी सावधान किया है। बड़ा श्यादवाद शैली के द्वारा दोनों दोषों को निवारण करने के लिए एक कलश लिखा है। देखिए कलश बहुत ही सुंदर है, इसमें ये लिखा है कलश में, मग्नः कर्म नयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति यत्। यानी वे जीव जो ज्ञान को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, ज्ञायक स्वभाव का अनुभव नहीं करते, वे जीव कितने ही कर्म नय का आलंबन करें, कितने ही क्रियाकांड करें, महाव्रत का भी आचरण करें, परंतु जब तक ज्ञान का अनुभव नहीं करते हैं वे जीव मग्ना संसार में डूबते हैं। मग्न होते माने संसार में, संसार समुद्र में तो डूबते ही हैं। जो कर्म नय के आलंबन माने क्रियाकांडी व्यवहारावासी हैं, ज्ञान का जिन्हें अभ्यास नहीं है वे तो डूबते ही हैं। लेकिन मग्ना ज्ञान नयेषिणा, और जो ज्ञान नय की इच्छा करने वाले हैं कि मैं तो ज्ञायक ही मात्र हूँ, ऐसी इच्छा तो करते हैं कि मैं ज्ञायक मात्र हूँ, लेकिन वो ज्ञायक मात्र पने के अनुभव के लिए उनका उद्यम जो चलता है अति स्वच्छंद मंद उद्यमा। एक तो जीवन स्वच्छंदी, पाप भाव से हटने का विकल्प ही नहीं आता, ये स्वच्छंदी जीवन कहलाता है। और मंद उद्यम ये है कि कभी स्वभाव में भी आ जाए तो शुभ ही में मगन हो जाता है, वहां से हटकर शुद्ध में जाने का उद्यम नहीं करता है। ये अत्यंत मंद उद्यमा, अत्यंत स्वच्छंद भी हैं और उनका उद्यम आत्म कहने चाहिए आत्मानुभूति का अत्यंत मंद चलता है। तो ऐसे जीव, दोनों ही जीव डूबते हैं, कर्म नय के आलम्बन लेने वाले और आत्मा को न जानने वाले, वे भी संसार सागर में डूबते हैं, और ज्ञान नय की इच्छा रखने वाले लेकिन स्वच्छंद आचरण करने वाले, पापानुचरण में ही प्रवर्तन करने वाले, वे भी डूबते। ये दोनों नय के एकांत करने वाले डूबते हैं। तो कौन तरते हैं संसार से? तो लिखा है विश्वस्योपरी ते तरंती, इस विश्व को वे पार करते हैं, इस विश्व के संसार सागर को वे पार करते हैं। सततम ज्ञानम भवंता स्वयं, जो निरंतर ज्ञान स्वरूप का अनुभव करते हुए ज्ञान होते हैं, ज्ञानमय होते हैं, वे तो विश्व को या संसार को पार करते हैं। और ए कुर्वन्तु न कर्म जातु न वशम, और वे जो संसार सागर पार करते हैं वे कर्म तो करते हैं, ए कुर्वन्ति न कर्म माने ये जो कर्म नहीं करते हैं, न जातु कदाचित कर्म नहीं करते हैं, और न वशम यान्ति प्रमादस्य च, और प्रमाद के बस में भी नहीं होते हैं। तो जब कर्म करते नहीं हैं, न शुभ न अशुभ, और प्रमाद के बस होते नहीं हैं, तो उसका अर्थ क्या निकला? शुद्धोपयोग में वर्तते, आत्मानुभूति में वर्तते। तो वे जीव जो आत्मानुभूति में वर्तते हैं वे कर्म भी नहीं कर रहे शुभ कर अशुभ, और वे वास्तव में प्रमाद में भी नहीं डूबे क्योंकि वे स्वरूप में सावधान है। ऐसे जीव अपने को ज्ञानमयी करते हुए विश्व से पार हो जाते हैं। लेकिन जो एक कर्म नय का आलंबन लेके कर्मकांड में मगन हो जाते हैं और धर्म मानते हैं वे संसार में डूबते, और जो ज्ञान नय का एकांत करके स्वच्छंदी हो जाते हैं और आत्मानुभूति का उद्यम नहीं करते हैं वे भी डूबते हैं। लेकिन जो निरंतर ज्ञान का अनुभव करते हुए ज्ञान को बढ़ाते हैं और कर्म से जो दूर हट जाते हैं और तो भी प्रमाद के अधीन नहीं होते हैं और शुद्धोपयोग रूप भाव में रमण करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं, वे जीव संसार सागर से पार होते हैं। ये मैंने मूल से अर्थ बताया। अब इसका श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। अब कर्म और ज्ञान का नए विभाग बतलाते हैं। कर्म नय के आलंबन से, एक कर्म नय शब्द कहा, कर्म नय का विषय क्रियाकांड को बताना है। तो जो जीव क्रियाकांड में प्रवर्तन करते हैं और आत्मा को नहीं जानते वे कर्म नय के आलंबन वाले हैं, एकांत कर्म नय का आलंबन किया है, इसलिए कर्म नय के आलंबन में तत्पर जो लगे हुए हैं ऐसे कर्म नय के पक्षपाती पुरुष डूबे हुए कहाँ डूबे हैं? अज्ञान में डूबे हुए, क्योंकि वे ज्ञान को नहीं जानते, ज्ञानम न जानन्ति, वे अपने ज्ञान माने ज्ञायक आत्मा को नहीं जानते। और ज्ञान नय एषिणा अपि मग्ना, ज्ञान नय में, ज्ञान नय के जो इच्छुक हैं, पक्षपाती हैं, वे पुरुष भी, निश्चयाभासी पुरुष भी वे भी डूबे ही हैं, काय में डूबे हैं, वे कहना चाहिए अत्यंत स्वच्छंद अशुभ भाव में डूबे हुए। ये अशुभ भाव में डूबने वालों को सीधी दुर्गति होती है, और जिस शुभ भाव में डूबने वालों को कदाचित एकाध गति सदगति मिल सकती है, लेकिन वे भी उल्टी मान्यता के कारण उस सदगति माने स्वर्गाधिक में जाकर मर के एक इंद्रिय पर्याय पाते हैं। इनकी भी वही हालत होती है जो हालत वो क्रियाकांडियों की होती है, स्वच्छंदियों की वही हालत होती है। केवल जो स्वच्छंद नहीं होते हैं और जो क्रियाकांड में मगन नहीं होते हैं और अपने शुद्धोपयोग में सावधान बरतते हैं, वे मोक्ष मार्ग के साधक कहलाते हैं और वे नियम से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, कर्म का क्षय करते हैं। इसलिए ज्ञान नय के पक्षपाती पुरुष भी डूबे हैं, क्योंकि वे अत्यंत स्वच्छंदता से अत्यंत मंद उद्यमी हैं। वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी हैं, विषय कषाय में वर्तते। वे जीव विश्व के ऊपर, केवल वे ही जीव विश्व के ऊपर तैर पाते हैं जो स्वयं निरंतर ज्ञान रूप होते हैं, ज्ञान रूप परिणमते हुए भी कर्म नहीं करते और कभी भी प्रमाद के वशीभूत नहीं होते। ऐसे जीव संसार सागर से पार होते हैं। इसमें दो बातें आ गई, एक तो वे जीव जो निश्चयाभासी होते हैं, जो अपने को ज्ञानी तो मानते हैं, खाली शब्द ज्ञान से आत्मा के स्वरूप को थोड़ा जानने लगे, स्मरण में रखने लगे और अपने को ज्ञानी मानकर, अब उनको ऐसा मेरे तो विकल्प कुछ होते नहीं, चाय पीने का तो विकल्प होता है, भोजन करने का विकल्प होता है, मंदिर जाने का विकल्प नहीं आता है, अजन में दर्शन करने का विकल्प नहीं आता है, ऐसे जीव निश्चयाभासी अनंत संसार में डूबते हैं। और दूसरे ऐसे हैं कि उनको शुभ विकल्प तो आता है, वे पाप से छूटना भी चाह छूटते भी हैं और शुभ कार्य में लगते हैं, लेकिन शुभ क्रिया कांड से मोक्ष मान लेते हैं। ऐसे व्यवहारवासी जीव भी संसार में डूबते हैं, केवल ऐसे जीव नहीं डूबते कि जो क्रियाकांड से धर्म मानते नहीं और क्रियाकांड से निवृत्ति करते हैं और ज्ञान स्वभाव से मुक्ति मानते हैं और अपने ज्ञान स्वभाव के अनुभव में प्रवर्तन करने और उसका ज्ञान स्वभाव का अनुभव का काल बढ़ाने में जो लगे रहते हैं, ऐसे जीव अपने ही स्व पुरुषार्थ के बल से कर्म का नाश करते हैं और मुक्त दशा की प्राप्ति करते हैं। ये इसमें लिखा है। इसके भावार्थ में अगर देखा जाए तो भावार्थ ऐसा आया है, यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है, क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय वाले ही जीव मिथ्यात्व वाले जीव अभिप्राय, उनका अभिप्राय ही मिथ्यात्व है, किंतु कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञान आत्मा को तो जानते नहीं और व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप क्रियाकांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें ही तत्पर रहते। व्यवहार क्रिया ही कांड को ही मोक्ष मार्ग मानते, पूजा पाठ को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं और वे शुभ क्रियाकांड में व्रतादि को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, ये उनकी अज्ञानता है। ऐसे अज्ञानी जीवों की संख्या जगत में बहुत है, लेकिन कुछ कुछ अध्यात्म का अभ्यास करने वाले भी जो भ्रम में प्रवर्तन करते, निश्चय की तो प्राप्ति हुई नहीं है, आत्मा की अनुभूति हुई नहीं है, केवल आत्मा की अनुभूति की बातें सीखी हैं और पाप भाव से हटते ही नहीं हैं, पाप भाव में बराबर उनकी प्रवृत्ति मगन रहती है और धर्म भाव शुभ भाव जो है उसमें कहते हैं हमारे विकल्प नहीं होते, ऐसा जो बहानाबाजी बनाते हैं, ये निश्चयवासी जीव हैं, ये भी संसार में डूबते हैं। इसलिए यहाँ लिखा, कितने ही परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते नहीं और व्यवहार दर्शन ज्ञान चरित्र क्रिया कांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं, एक क्रिया के पक्षपाती हैं। वे उसका पक्षपात करके ऐसे कर्मनय के पक्षपाती लोग जो कि ज्ञान को तो जानते नहीं और कर्मनय में खेद खिन्न होते रहते हैं, वे संसार में डूबते हैं। और कितने लोग ऐसे भी हैं कि जो आत्मस्वरूप को यथार्थ जानते नहीं जानते और सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि यूं कहिए एकांतवादी निश्चयाभासी के उपदेश, अपना अंतरंग में ज्ञान स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उसमें ही पक्षपात करते हैं, वे अपनी परिणति में किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना अपने को सर्वथा अबंध मानते। मैं तो आत्मा, मेरा आत्मा तो अनादि अनंत अबंध है। तो भैया अनादि अनंत अबंध है तो आत्मा कह रहे हो, तुम्हारे पर्याय में तो बंध दशा वर्त रही है। अबंध दशा तो तब आएगी जब अबंध स्वभावी आत्मा का अनुभव करोगे, तब पर्याय का बंधन टूटेगा और पर्याय में अबंध दशा प्रगटेगी। तो तुम स्वभाव को तो याद करते रहते हो, लेकिन स्वभाव में तन्मय हो करके पर्याय के बंधन को तोड़ते नहीं हो और ऐसे ही में मोक्ष मार्ग मान लेते हो, ये निश्चयाभास है। इसलिए किंचित भी परिवर्तन हुए बिना अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं और व्यवहार दर्शन ज्ञान चरित्र के क्रियाकांड को सर्वथा निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं। ऐसे ज्ञान नय के जो पक्षपाती निश्चयाभासी लोग हैं, वे जो कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते, स्वरूप का माने आत्मानुभूति का कोई पुरुषार्थ नहीं करते, और शुभ परिणामों को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषायों में वर्तते हैं, वे जीव भी संसार समुद्र में डूबते हैं। इस तरह से इस जो इस तरह से जो 111वें कलश की गाथा, कलश का जो अर्थ और उसका जो भावार्थ था पंडित जयचंद जी का, वो हमने यहाँ कहा। अभी हम एक कलश और पढ़ रहे जिसमें फिर अपना ग्रंथ का समापन कहलाएगा, और उसके बाद हम लंबी चर्चा के द्वारा आपसे प्रश्न भी करेंगे और कुछ और इसका सार बताएंगे। आखिरी कलश आया है, 112 नंबर का कलश आया है। उस 112 नंबर के कलश में लिखा है, अब पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते। मंगलाचरण में ज्ञान की महिमा की, आचार्य महाराज का ये बहुत बड़ा गुण है, खासकर अमृत चंद्राचार्य टीकाकार का, कि पूरे समय सार में हर अध्याय के प्रारंभ में ज्ञान का मंगलाचरण किया, और जहाँ कहीं अध्याय के अंत में मंगलाचरण किया तो वो ज्ञान ही का मंगलाचरण किया। और वो ज्ञान कौन, द्रव दृष्टि से देखो तो ज्ञायक आत्मा ही ज्ञान है, पर्याय दृष्टि से देखो तो जो ज्ञायक स्वभाव में रमने वाला ज्ञान है वो ज्ञान है। दोनों ज्ञानों को कल्याणकारी बताया, एक को आश्रय की अपेक्षा कल्याणकारी बताया, एक को प्रगट पर्याय में प्रगट होने की अपेक्षा कल्याणकारी बताया। तो इसमें कह रहे हैं पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण कर रहे हैं और ज्ञान की महिमा यहाँ गाई जा रही है। श्लोक है, ये मंद्राकांता छंद कहलाता है। मंद्राकांता छंद खुमारी का छंद कहलाता है, जिनको अध्यात्म की खुमारी आ जाती है। जैसे जगत के पियक्कड़ों को पीने के बाद कुछ खुमारी आ जाती है, यहाँ अध्यात्म के रसकों को अध्यात्म का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करने के बाद खुमारी आ जाती है। उस खुमारी का वर्णन करने के लिए अमृत चंद्राचार्य ने मंद्राकांता छंद को अपनाया, और वो उसमें क्या कहा वो मैं पढ़ता हूँ और अर्थ करता हूँ। भेदोन्मादम ब्रह्म रस भरान नाट्यत पीत मोहम मूलोन्मूलम सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन हेलोन्मीलत परम कलया सार्धमारब्ध केली ज्ञान ज्योति कबलित तमा प्रोज्रम्बे भरेण। कलश का अर्थ बताते हैं, पीत मोहम जिन्होंने मोह रूपी मदरा को पिया है। देखो कौन सी मदरा, मोह की मदरा, मोह रूपी शराब को जिनने पिया है, और उसके कारण क्या हो रहा है, भ्रम रस भरात भेदोन मादम नाट्यत, भ्रम के रस का भार बढ़ जाने के कारण अतिशय पने से शुभ अशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को नचाता है, माने स्वयं शुभ अशुभ कर्मों में प्रवर्तन करता है। आत्मानुभव करने का वो पुरुषार्थ उसके जागता नहीं है, क्योंकि बुद्धि का नशा आ गया है, मोह का नशा आ गया है, और मोह के नशे में शुभ अशुभ कर्म तो चलते हैं, लेकिन वहां से हटकर से जो निवृत्ति दिलाने वाला कर्म है, आत्मा की अनुभूति वाला कर्म, वो नहीं करते। तो ऐसे समस्त कर्मों को ज्ञान का जो स्वभाव है, सम्यक ज्ञान अगर उदित होता है तो ऐसे समस्त कर्मों को अपने बल के द्वारा मूलोन मूलम कृत्वा, जड़ मूल से उसको उखाड़ करके ज्ञान ज्योति भरेण प्रज्वम्बे, अत्यंत सामर्थ्य युक्त ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, और वह ज्ञान ज्योति ऐसी है कि जिस ज्ञान ज्योति ने अज्ञान रूपी अंधकार को ग्रास कर लिया है, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर दिया है, और हेला उन्मिलत लीला मात्र में, सहज मात्र में, थोड़े ही से समय में वह ज्ञान ज्योति विकसित हो जाती है, और परम कलया सार्ध के आरब्ध के लिए, और परम कला माने केवल ज्ञान की कला, अंतिम कला को प्रकट होकर केवल ज्ञान रूप में परिणत होती है, ऐसी वह ज्ञान ज्योति है। वह ज्ञान ज्योति निरंतर नमन करने योग्य है, आश्रय करने योग्य है, वो अपनाने योग्य है, प्रकट करने योग्य है। इस तरह से ये एक कलश का भी अर्थ हुआ, और ब्रैकेट में लिखा, जब तक सम्यक दृष्टि छद्मस्थ है तब तक ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ शुद्ध नय के बल से परोक्ष क्रीड़ा करती है, और केवल ज्ञान होने पर वही ज्ञान ज्योति प्रत्यक्ष साक्षात हो जाती है, और प्रत्यक्ष उसकी क्रीड़ा, अनुभव की अखंडित क्रीड़ा उसके चलती है। ये इस ज्ञान ज्योति को याद करते हुए पुण्य पाप अधिकार को पूरा किया। इस अधिकार को पूरा करते हुए पंडित जयचंद जी लिखते हैं, आपको माने ज्ञान ज्योति को प्रतिबंधक कर्म जो भाव कर्म जो कि स्वभाव भेद रूप होकर नाचता था, ये नाचने का मतलब यही है, अपनी परिणति में जब तक स्वभाव उदय हो में आता है, स्वभाव बार बार प्रकट होता है, शुभ विकल्प होते हैं, ये स्वभाव को नचाना कहलाता है, तो बार बार प्रकट होते हैं उनको नचाता था, ज्ञान को भुला देता था, और उसे अपनी शक्ति से उखाड़ कर ज्ञान ने अपना पावर लगाकर, ज्ञान के पास वो पावर है कि अनंत कर्म जो हैं, अनेकों कर्म वे क्षण भर में उखाड़ के फेंक दे, ऐसी उसमें ताकत है। तो अपन ज्ञान ज्योति ने उसे अपनी शक्ति से उखाड़ कर, वह जो ज्ञान ज्योति है संपूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित होती है, अर्थात ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान ज्योति बन जाती है। वह ज्ञान ज्योति, वह ज्ञान कला केवल ज्ञान रूपी परम कला का अंश है। दो बातें, जब तक अभी ज्ञान ज्योति चौथे गुण स्थान में प्रगटी है, और अब वो आगे के गुण स्थानों में बारहवें तक चलेगी, तब तक वो ज्ञान ज्योति का अंश कहलाएगी, और जब वो ज्ञान ज्योति परिपूर्ण हो जाएगी तो वो परम कला केवल ज्ञान रूपी कला कहलाएगी। इस तरह से वो अंश परम कला जो अंश रूप थी, वो केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को जानती है, उस ओर प्रगति करती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि ज्ञान ज्योति ने केवल ज्ञान के साथ में क्रीड़ा प्रारंभ की है। कौन सी ज्ञान ज्योति? जो अंश रूप में प्रगटती है, वो ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान को पाने का उद्यम करती है, और निर्विकल्प अनुभव को बढ़ाती है, उससे केवल ज्ञान के साथ वो क्रीड़ा करने वाली कहलाती है। ज्ञान कला सहज रूप से विकास को प्राप्त होती जाती है, और अंत में वह परम कला यानी केवल ज्ञान बन जाती है। इस तरह से पंडित जयचंद जी सामने भी भावार्थ लिखा, और इसकी जो टीका है अमृतचंद्राचार्य की, बिल्कुल उसमें इतना एक लाइन लिखी, एक वाक्य लिखा कि इस प्रकार पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म एक पात्र बनकर रंगभूमि से बाहर निकल गया, यानी इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहे। तो ये जो पुण्य पाप भाव है नाटक के रूप में होने से, इति पुण्य पाप रूपेण द्विपात्र द्विपात्रीभूत एक पात्री भूय कर्मम निष्क्रामता। आए थे जब मंच पर तब ये पुण्य पाप के दो भेष बना के आए थे, और जब ज्ञान ने इनका स्वरूप जान लिया, और ज्ञान ने ज्ञान में लीन होकर के केवल ज्ञान पाया, तो ये जो दोनों पुण्य पाप हैं ये दोनों एक होकर, ये एक ही थे, भ्रम जाल के कारण अज्ञानियों को पुण्य पाप में भेद नजर आता था, दोनों एक हो गए और एक होकर के मंच छोड़ के चले गए। ज्ञान का साम्राज्य छा गया, वहां कर्म का साम्राज्य कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता? इति श्रीमद अमृतचंद्राचार्य विरचित आचार्य अमृतचंद द्वारा रचित समयसार व्याख्यायाम, समयसार व्याख्या में आत्मख्यातौ आत्मख्याति नाम की पाप प्रूप का तृतीय अंक, पुण्य पाप का निरूपण करने वाला तीसरा अंक माने तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। अब भावार्थ में आखिरी भावार्थ पंडित जयचंद जी का, यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है, च चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप, तथापि उसने पुण्य पाप रूपी दो पात्रों का स्वांग धारण करके रंग भूमि में यानी मंच में प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञान ने यथार्थ जान लिया तब वह एक पात्र ज्यों की त्यों होकर रंग भूमि से बाहर निकल गया और नृत्य करना भी उसने बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा किया जैसे एक बहुरूपिया होता है, वो बहुत से रूप बनाकर आता है अलग अलग रूप, पर जब जब उसको जिसके पास वो आया उस व्यक्ति ने अगर उसके असली रूप को पहचान लिया तो फिर वो अपना रूप छोड़ देता है और असलियत में आ जाता है। ऐसे ही पुण्य पाप ने ये पुण्य दो रूप बनाकर मंच पे आया था, लेकिन ज्ञान ने उसको जान लिया और दोनों को एक जाति का जान लिया, एक वेदनी कर्म का पुत्र जान लिया, और जब उन्हें जाना तो वे मंच छोड़ करके दोनों एक होकर के चले गए। आगे एक चार लाइनें इन्होंने लिखी हैं, बहुत बढ़िया। वे क्या लिखते हैं, और ये चार लाइनें ही इस अध्याय का बिल्कुल अंतिम अंश है, इसलिए यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा। आश्रय कारण रूप संवाद सु भेद विचार गिने दो न्यारे, पुण्य रूप पाप शुभा शुभ भावन बंद भये सुख दुख करारे, ज्ञान भये दो एक लखे आश्रय बंद के कारण हैं दो रूप इन्हें तज जिन मुनि मोक्ष पधारे। वाह, पुण्य पाप अधिकार में वो पुण्य पाप का स्वरूप दिखाकर जिन मुनि ने पुण्य पाप को छोड़ा और मोक्ष पधार गए। देखो एक एक शब्द का अर्थ कर दें। इसमें लिखा है अपन ने जब समय सार का पुण्य पाप अधिकार आरंभ किया था तो शिष्य ने तो ये कहा था कि इस शुभ कर्म को सुशील मानो और अशुभ कर्म को कुशील मानो। अमृत कुंद कुंदाचार्य ने कहा अरे जो संसार में परिभ्रमण कराए दाखिल करे उसको कैसे हम सुशील मान सकते हैं। और फिर टीका में अमृत चंद्राचार्य ने खुलासा किया था कि वो जो मानने वाला है पुण्य को भला मानने वाला चार कारणों से मानता है, क्योंकि पुण्य क्रिया का आश्रय अलग होता है, पाप क्रिया का आश्रय अलग होता है, इसलिए वो आश्रय भेद मानता है, कारण भेद मानता है। पुण्य का बंध विशुद्ध परिणामों से होता है, पाप का बंध संकलेश परिणामों से होता है, तो कारण भेद मानता है। रूप में भी उनका अंतर मानता है, एक पुण्य रूप है साता रूप है और एक असाता रूप है। ऐसा जो संवाद उन्होंने कराया उसमें भेद दिखाने की कोशिश की अज्ञानी ने, और फिर उसका खुलासा करके ये बताया कि भले आश्रय दो हो गए लेकिन दोनों आश्रय पर हैं, पुद्गल हैं, पर के आश्रय से पुण्य पाप जन्मते हैं, स्वभाव के आश्रय से नहीं जन्मते, इसलिए आश्रय भेद को खंडन कर दिया और कारण भेद को भी खंडन किया। एक में तीव्र कषाय काम करती है, दूसरे में मंद कषाय काम करती है, मगर दोनों में कषाय काम करती है, निष्कषाय भाव काम नहीं करता, इसलिए पुण्य पाप दोनों कषाय के कार्य हैं, इसलिए इनमें भेद करना अज्ञान है। और इन दोनों का रूप, एक का रूप साता रूप है, साता फल देता है, इष्ट लगता है, और एक का फल असाता रूप होता है, अनिष्ट लगता है। भले तुमको इष्ट अनिष्ट लगे लेकिन दोनों परिणाम, दोनों इष्ट अनिष्ट लगने वाली चीजें भी पुद्गल ही हैं, वास्तव में आत्मा का कुछ भी उसमें नहीं है। इसलिए ऐसा रूप स्वाद सुभेद विचार है, और स्वाद कहते हैं स्वाद माने स्वाद, स्वाद का अर्थ होता है उसका फल, बाहर में अनुकूलता बाहर में प्रतिकूलता, इन दोनों का ही फल है। लेकिन ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है, इसलिए वे दोनों भी एक ही हैं। ऐसा उन्होंने जो जो भेद गिना था, जो जो भेद माना था ज्ञानी ने, उन दो को भेद को उसने न्यारा न्यारा करके पुण्य को अलग कहा और अच्छा कहा, पाप को बुरा कहा। लेकिन आचार्यों ने, ज्ञानियों ने, ज्ञानी ने कहा कि शुभाशुभ भावन बंद भय, शुभ अशुभ भाव से तो बंद होता है, और बंद भय सुख दुख करारे, वे जो दोनों कार्य हैं, जो दोनों भाव हैं, एक बाहर में सुख की अनुकूलता जुटाता है, एक बाहर में इंद्रिय दुख की अनुकूलता जुटाता है, एक इंद्रिय सुख की अनुकूलता, एक इंद्रिय दुख की अनुकूलता, लेकिन वो सब कुछ है वो इंद्रिय से संबंधित है, अतीन्द्रिय आत्मा की अनुकूलता नहीं जुटाते, इसलिए दोनों वास्तव में दुखदायी है। ज्ञान भय, जब भेद ज्ञान हो जाता है, अनुभव ज्ञान हो जाता है, आत्मानुभूति हो जाती है, तब तो वे दो नहीं नजर आते, भेद रूप नजर नहीं आते, बल्कि ज्ञान भय दो एक लखे। ज्ञान होने पर दोनों को एक ही मानता है, आश्रय आदि समान विचारे, और आश्रय आदि सब में समानता देखता है। आश्रय भी पुद्गल का, कारण भी पुद्गल में, रूप भी उनका, वो पुद्गल का कार्य, और उनका जो स्वाद है अनुकूलता प्रतिकूलता वो भी सब पुद्गल का कार्य। इसलिए ज्ञान भय दो एक लखे, दोनों को एक पहचानता है। आश्रय आदि समान विचारे, आश्रय आदि को भी समान मानता है। बंध के कारण, दोनों किसके कारण हैं? दोनों बंध के कारण हैं। बंध के कारण दो इन्हें तजी, दोनों को छोड़ करके इन्हें जिन मुनि मोक्ष पधारे, दे मुनि राज मोक्ष पधारते हैं, जो शुभाशुभ भाव को छोड़कर शुद्ध भाव में स्थिर होते हैं और ज्ञान भाव की धारा को परिपूर्णता को लाने के लिए वे उद्यम करते हैं, उनका वह पुरुषार्थ, आत्मानुभव का पुरुषार्थ उन्हें ज्ञान धारा को पूर्णता की ओर ले जाता है। और उनकी वह ज्ञान धारा पहले तो ज्ञान धारा का अंश है, बाद में वह ज्ञान धारा जब आगे बढ़ती है तो वह अंश विलीन हो जाता है और पूर्ण अंश प्रकट हो जाता है, यानी केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस तरह से ये अध्याय, ये पुण्य पाप अधिकार, ये नाश पूरा हुआ और समापन हुआ, और अंत में ये लिखा इस प्रकार से श्री समय सार जी की भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री परमागम की समय सार परमागम की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नाम की टीका में पुण्य पाप नाम का तीसरा अंक, तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। और इस तरह से आज अपना 10 दिन में ये जिसमें 21 गाथाएं हैं, यानी 19 गाथाएं हैं शायद, वे पूरी गाथाएं 55 से लेकर 63 तक की गाथाएं, 19 गाथाएं पूरी हुई, 19 गाथाओं की टीकाएं पूरी हुई, 19 गाथा की टीका का भावार्थ पूरा हुआ और अतिरिक्त तो उसका विवेचन भी पूरा हुआ। और आज चूंकि पर्युषण पर्व का ये अंतिम दिन है तो पर्युषण पर्व भी पूरा हुआ। अच्छा हो कि हमारा मिथ्यात्व भी पूरा हो जाए और हम आत्मानुभूति के द्वारा अपने परिपूर्ण आत्मा को प्रकट करें, इस पवित्र भावना से ये बात परिपूर्णपने समाप्त होती है। और अभी 10-15 मिनट का टाइम अपने पास है, 15 मिनट के करीब, उसमें जितनी भी आपकी कोई चर्चा हो या प्रश्न हो तो हम उसका समाधान करेंगे, आपका जो भी प्रश्न हो विचार करें।
हाँ, हमारे अबाउट 10 मिनट रहेंगे, तो हिना बेन तमारो क्वेश्चन पूछ लियो पहला।
हाँ संदीप जी,
हाँ जी,
आपने आपने कहा कि उपसम श्रेणी से जो गिरता है वो सीधा छठवें गुणस्थान में आता है,
तो छठवें में वो आता है जिसके संजलन कषाय तीव्र उदय में आती है, संजलन वो आता है छठवें में, उससे नीचे नहीं जाता। उससे नीचे जाने के लिए उसकी कषाय दूसरी उदय में आनी चाहिए। प्रतिख्यानावरण अगर उदय में आ जाए तो फिर वो पांचवें में आएगा, अगर अप्रतिख्यानावरण उदय में आ जाए तो छठवें में आएगा, छठवें में नहीं, अप्रतिख्यानावरण उदय आ जाए तो चौथे में आएगा, और छायक सम्यक दृष्टि है तो चौथे से नीचे नहीं जाएगा, और उपसम सम्यक दृष्टि है और फिर कषाय मिश्र कषाय उदय में आ जाए तो तीसरे में आएगा, और अनंतानुबंधी उदय में आ जाए तो दूसरे गुण स्थान में आएगा, और मिथ्यात् उदय में आ जाए तो पहले में आएगा। तो जो छायक सम्यक दृष्टि है वो गिरकर 11वें से गिरता है तो चौथे तक ही गिरता है, और जो तुम्हारे से उपसम सम्यक दृष्टि है वो 11वें से गिरता है तो चौथे तक भी गिर सकता है और नीचे तक चला जाता है।
पंडित जी प्रश्न है, शपथ श्रेणी और छायक श्रेणी उसमें क्या फर्क है और क्या होता है वो बताइए।
किन किन में फर्क पूछा आपने, फिर से बोलिए।
छपक और छायक में,
अच्छा अच्छा छपक और छायक कह रहे हैं ना, देखो छपक तो कहते हैं उस आत्मा को जो छपक श्रेणी आरोहण करता है, वो छपक आत्मा कहलाता है, और क्षायक शब्द है जो कर्मों को क्षय करने की क्रिया है, उस क्रिया को जब एक में भाव रूप में बोला जाता है तो उसको क्षायक कहते हैं। माने कर्मों को क्षय करने की क्रिया का नाम क्षायक है, और जो इस क्रिया को करने वाला आत्मा है वो क्षपक है। आत्मा को क्षपक कहा और उस क्रिया का नाम क्षायक कहा, तो क्षायक क्रिया करने वाले क्षपक कहलाते हैं और क्षपक मुनिराज होते हैं।
जब मुनिराज श्रेणी करते हैं तब तो क्षपक और उपसम श्रेणी चढ़ते हैं।
उपसम और क्षपक, उपसम श्रेणी और क्षपक श्रेणी।
अच्छा
बराबर। तो वो उपसम शब्द है और जो क्षपक शब्द है वहाँ वो कर्म के चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम होगा तो वो उपसमक कहलाएगा, वो उपसम श्रेणी कहलाएगी। और चारित्र मोहिनी कर्म का अगर छपना प्रारंभ हो जाएगा चारित्र मोहिनी का तो वो उसमें एक एक प्रकृतियों का क्रम सा क्षय करता है और अभाव करता चला जाता है, उसको कहते हैं छपक श्रेणी। छपक श्रेणी वाला जो है नियम से कर्म का क्षय करता हुआ बारहवें गुण स्थान में पहुंचता है और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाता है। लेकिन उपशम श्रेणी वाला नियम से ग्यारहवें से अंतर मुहूर्त के भीतर गिरता है। और मैंने बताया यदि वो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला क्षायक सम्यक दृष्टि था तो चौथे से नीचे नहीं गिर सकता है, छठवें में गिर सकता है और वहीं भी रुक सकता है, पांचवें में गिर सकता है वहां रुक सकता है, लेकिन चौथे तक गिरता है, इसके नीचे नहीं जा सकता। और यदि वो उपशम श्रेणी वाला है उसके दोनों संभावना है कि वो वहां से गिरता है तो क्रम क्रम करके गिरता आता है और गिरते हुए वो पहले गुण स्थान में चला जाता है, उसको पहले गुण स्थान में जाना अनिवार्य है उपशम श्रेणी वाले को। छपक श्रेणी वाला तो गिरता ही नहीं है, चढ़ते ही जाता है, इसलिए वो छपक श्रेणी में गिरना नहीं होता, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के गिरना होता है। और गिरने में छायक सम्यक दृष्टि ने अगर छपक श्रेणी आरोहण किया, उपशम श्रेणी आरोहण किया है तो वो गिरेगा तो खाली छठ में चौथे गुण स्थान तक, उससे नीचे नहीं जाएगा। और उपशम सम्यक वाले ने उपशम श्रेणी आरोहण किया हो तो वो गिर करके पहले में आएगा, ऐसा उसका आगम का नियम है, क्योंकि उसके उपशम है वो पूरा का पूरा उदय में आ जाता है, पूरी प्रकृतियों का उपशम किया था तो सारी प्रकृति उदय में आती है, और अकेली चारित्र मोहिनी उदय में नहीं आती है, दर्शन मोहिनी भी उदय में आ जाती है, तो वो गिरता गिरता सीधा पहले गुण स्थान में चला जाता है। और तुम्हारे से छायक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी से गिरता है, छायक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़े और ग्यारहवें से गिरे तो छायक होने से नीचे तो जा ही नहीं सकता, ले चौथे ही गुण स्थान तक आता है, ऐसा नहीं। और जैसी जैसी कसाय उदय में आती है वैसे संजुलन का तीव्र उदय आवे छठवें में आता है, संजुलन के बाद प्रतिख्यानावरण का उदय आवे पांचवें गुण स्थान में आता है, और अप्रतिख्यानावरण का उदय आवे तो चौथे गुण स्थान में आता है। और छायक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी की सत्ता है ही नहीं, और दर्शन मोह आदि की भी सात प्रकृतियों की सत्ता ही नहीं है तो उदय में आने का प्रश्न नहीं, उपशम भी नहीं।
अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि यदि जीव ग्यारहवें से गिरता है यानी कि ग्यारहवें से नीचे उतरता है तब जैसे कहा कि अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान जो कर्म का उदय होता है उस प्रकार से वो नीचे आता है, लेकिन वो वहां से फिर उग्र पुरुषार्थ करके आगे चढ़ भी सकता है कि नहीं चढ़ सकता है, और वो
पुरुषार्थ
सम्यक दर्शन के हिसाब से होगा कि नहीं होगा?
नहीं सुनो, मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर, कोई व्यक्ति कोई बड़ा तुम्हारे फ्लैट बनाए हैं और ग्यारहवीं मंजिल से छूट जाए और गिरे तो बीच में क्या पुरुषार्थ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, जमीन पे आना पड़ेगा, फिर दोबारा अगर जमीन पे आप सुरक्षित हो और उठ गए हो तो उठ के आगे पुरुषार्थ पुराण चढ़ने का कर सकते हो, वो भी क्या जब मिथ्यात्व की भूमि में आया तो अब पुरुषार्थ अभी ऊपर चढ़ने का तो यही होगा कि फिर से सम्यक प्रकट करो, फिर से आत्मानुभूति प्रकट करो तो चौथे गुण स्थान में पहुंच जाओगे, फिर से तुम्हारे से अप्रतिख्यानावरण का उपशम करो आत्मानुभूति के बल से तो पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाओगे। फिर से प्रतिख्यानावरण का उपशम करो आत्मानुभूति के बल से तो छठवें गुण स्थान में, छठवें में नहीं कहिए, सीधा अप्रतिख्यानावरण का उपशम करो और उसके साथ साथ जो संयुलन है उसका मंद उदय करो तो सीधे पांचवें से सातवें में पहुंचोगे। फिर विकल्प दशा में आओगे तो गिर के छठे में आओगे। और एक बात और बता दूं आपको कि उपशम श्रेणी वाला जीव उतरता नहीं है, गिरता। उतरना अलग चीज है, गिरना अलग चीज है। जैसे अपन सीढ़ियों से उतर आते हैं वो एक अलग चीज है, जहां चाहे वहां रुक भी जाएंगे सीढ़ी से उतरे तो, लेकिन वो उतरता थोड़ा ही है, वो तो वहां से गिरता है। इसलिए गिरने वाले को कोई रोकने वाला नहीं जब तक जमीन पे ना आ जाए, ऐसा है। ऐसे ही उपशम श्रेणी से गिरने वाले आत्मा को नियम से अगर वो उपशम सम्यक दृष्टि है तो उसे नियम से मिथ्यात्व की भूमि में आना होगा, और छायक सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व की भूमि में ना आकर वो माने चौथे गुण स्थान की भूमि में आएगा और फिर से आत्मा का आश्रय लेकर प्रतिख्यानावरण प्रतिख्यानावरण आदि कषायों का जैसे जैसे उपशम करेगा वैसे वो आगे के गुण स्थानों में फिर से चढ़ जाएगा। और फिर उद्यम करके अगर छपक श्रेणी का उद्यम कर सका तो कर्मों का क्षय करता हुआ बारहवें गुण स्थान में छपक बन जाता है।
तो यानी कि मतलब है कि वो छायक होगा तो भी उसे वापस सम्यक दर्शन तक प्राप्त करना होगा।
छायक को सम्यक दर्शन कभी छूटता नहीं है, शादी अनंत काल का होता है, इसलिए अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कभी प्रश्न नहीं है।
तो पंडित साहब एक भाव में, पंडित साहब एक बार में कितनी बार एक जीव 13वें 11वें गुण स्थान तक जा सकता है?
एक बार में
एक भाव में कितनी बार जीव 11वें गुण स्थान तक जा सकता है?
अभी आगम में ऐसा तो उल्लेख नहीं लिखा और ना कहीं मिलता है कि ये कितने बार श्रेणी चढ़ेगा, पर ये बात पक्की है कि वो जीव जो मुनि दशा वाला है और उपशम सम्यक दृष्टि है तो वो ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर दोबारा अब मिथ्यात्व अवस्था में आने पर उसकी दो दशाएं बनती हैं। कहो तो आत्मा को भूल जाए तो अनादि मिथ्या दृष्टि की तरह हो जाए, और अगर फिर से पुरुषार्थ संभाल कर ले और आत्मा का पुनः स्मरण कर ले या पुनः आत्मा का अनुभव हो जाए तो वो शीघ्र पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन ये क्रिया भी बार बार नहीं होती है, क्योंकि या तो वो इतना हीन पुरुषार्थी हो जाता है कि दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ता नहीं, या फिर ऐसा उग्र पुरुषार्थ करता है कि वो अपने उग्र पुरुषार्थ से मोह का क्षय करता हुआ बारहवें गुण स्थान पहुंच जाता। इसलिए बार बार ये श्रेणी चढ़ना उतरना और गिरना ऐसा नहीं होता है, उसका बारंबार नहीं होता है, एक ही बार में तो सब निर्णय हो जाता है, या अब आगे उठेगा तो सीधा क्षय करेगा या फिर गिर गया है तो अभी अनंत अर्ध पुद्गल परिवर्तन तक भटक सकता है।
अन्ना जी के किसी उसमें आया है
तो पंडित जी मुनि नकल और सहदेव जो थे उनको तो राग आया मुनि के लिए कि मुनि को वो गर्म दागिना पहनाए थे, तो वो अभी तो सर्वार सिद्धि में है तो उनकी भूमिका कैसी होगी, क्योंकि वो भी ऐसे तो मोक्ष पे ही जाने वाले थे ना।
वो सर्वार सिद्धि वाले सब देव चौथी गुण स्थान वाले होते हैं,
चौथे वाले
सम्यक दृष्टि होते हैं, हाँ तत्व ज्ञानी होते हैं, लेकिन असंयमी होते न देश संयम न सकल संयम, कोई नहीं, देवों के संयम होता ही नहीं।
नहीं नहीं, लेकिन जो तो ये एक ही राग में उन वो लोग इतना गिर गए कि चौथे गुण स्थान पे आ गए।
हाँ, एक ही उस परिणाम से, शुभ भाव के परिणाम से,
हाँ।
जब वो गिरे तो गिरे तो छठवें में आए, क्योंकि शुभ भाव जब उनको आया वो शुभ भाव जो था संजुलन का तीव्र उदय वाला शुभ भाव था, इसलिए गिरेगा तो छठवें ही में आएगा। और छठवें में अगर उसने आयु बंधन नहीं किए हैं पहले से और फिर आयु बंध उसको होगा तो उसके लिए जो आयु बंध होगा वो देवायु का होगा, और चूंकि मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़ने वाला उत्कृष्ट परिणाम वाला था और विशुद्ध परिणाम भी उसके थे और पुण्य भी बड़ा उत्कृष्ट जाति का था, इसलिए उससे जो बंध होता है वो सर्वार सिद्धि वाला बंद भी बंद हो जाता है किसी किसी को, और वो 33 सागर की स्थिति वाला होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देव पर्याय में कितने ही ऊंचे से ऊंचा अगर देव हो, सर्वार सिद्धि के देव से कोई ऊंचा होता नहीं। ऊंचाई भी बाहर की ऊंचाई भी सर्वार सिद्धि की मोक्ष शिला के बिल्कुल नजदीक रहती है, और अंतर की ऊंचाई भी देखो तो छायक सम्यक सिद्धों जैसा निर्मल होता है, लेकिन बाहर का संयम देखो तो बिल्कुल असंयमी दशा होती है। पंचम गुण स्थान वर्ती पशु और चौथे गुण स्थान वर्ती सर्वार सिद्धि के देव से ऊंची पदवी वाला होता।
अच्छा,
क्या कहा
पंडित जी?
बहुत बढ़िया
पंडित जी, हमारा टाइम होने लगा है, हम छिनवाणी स्तुति ले लेते हैं और फिर सब प्लीज दो मिनट रुकना, थोड़ी अनाउंसमेंट है। कंचन बेन को आप अनम्यूट कर देंगे प्लीज, कंचन बेन छिनवाणी स्तुति लेंगे। उनका नंबर है 416-384-0046, प्लीज उनको म्यूट अनम्यूट कर दो। कंचन बेन छिनवाणी स्तुति ले लो।
जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावती रागा दिविकलप तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ के, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूं दो।
छिनवाणी मात की जय हो,
जय हो।
अभी दो थोड़ी सी अनाउंसमेंट है, सब प्लीज रुकना। पहले पंडित जी, हमारे मोना मोना की ओर से आपका बहुत 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 ही धन्यवाद के आपने हमको तारा पुण्य पाप अधिकार के 10 दिन तक हमें लेक्चर्स दिए, तो आपका बहुत ही धन्यवाद। और सबके थोड़े स्पष्टीकरण भी हो गए होंगे, गुरुदेव के प्रवचन आप सब सुनते थे सुबह तो, और किसी के क्वेश्चंस ना रिजॉल्व हुए हैं तो आप पंडित जी से बाद में कल संपर्क कर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मगर कल 4 बजे पंडित जी का नहीं रहेगा, कल रात को स्वाध्याय इन्फो का जो नंबर है 1712-432-0900, एक्सेस कोड 781381, वहाँ
हेलो
भानु बेन, आपका फोन कट हो गया है।
हेलो भानु बेन, आपकी आवाज आ रही
है। मैं मिलाती हूँ उसको।
हेलो हेलो संभाई छे
હવે તમારો અવાજ વચમાં કપાઈ ગયો તો
હા એટલે છે ને કે સબ કોન્ફરન્સ નો એનાઉન્સમેન્ટ આવતી હતી એટલે કાલે રાતે પંડિતજી નું પ્રવચન છે સ્વાધ્યાય ઇન્ફો માં અને બીજું જિસ જિસ ને હમે સહાય દી હૈ યહાં ટોરંટો સે પંડિતજી કે પ્રવચન જિન જિનો કે ઘર સે હુએ હૈ તો મેં આપ સબકા ઉન સબકા ધન્યવાદ માનતી હું आशीष आज आशीष के घर से हुआ है, आशीष भाई थैंक यू, अनु के घर से हुआ था, अनुराधा थैंक यू, प्रतिमा के घर से हुआ था, प्रतिमा थैंक यू, और निमित के घर से हुआ था, निमित भाई थैंक यू, और संजय थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग एंड कीपिंग मी आल्सो पोस्टेड एज वेयर पंडित जी वॉज। So everybody, thank you very much. और मोना के सब मुमुक्षों को जय जिनेन्द्र, और कल हम पंडित जी के साथ कल स्वाध्याय इन्फो के प्रोग्राम में मिलेंगे। धन्यवाद।
और पंडित जी का संपर्क करना तो कौन से नंबर पर कर सकते हैं?
हाँ
पंडित जी का कितने बजे रात को?
कल 7:30 कल 7:30 और नंबर नोट कर लेना सब 1712-432-0900 एक्सेस कोड 781-381
7:30 को ईस्टर्न टाइम पे रहेगा, न्यूयॉर्क टाइम पे, तो उसमें कंफ्यूजन।
हाँ थैंक यू भाभी भाई। 7:30 ईस्टर्न टाइम।
और नंबर फिर से रिपीट करूं 1712-432-0900 एक्सेस कोड 781381 बराबर
बराबर बराबर
381 हैश
781381 पाउंड
हैश।
ओके
ओके
अनुबेन पंडित जी ने लिया हुआ बदल खूब खूब आभार।
हाँ रसिक भाई કોઈ કોઈ ને નથી લઈ આવતું ને કઈ નથી થતું, આપણે બધા આ કરતા છીએ। બધાને મજા આવી અને
ચલો જય જીનેન્દ્ર।
હા જય જીનેન્દ્ર। અને હવે પ્રતિક્રમણ શરૂ કરવાના છે સંવત્સરી, તો આ જ નંબર ઉપર કરવાના છે, તો જેમને પ્રતિક્રમણ કરવું હોય તો આ નંબર ઉપર જ।
पहले तो रिक्वेस्ट है जो भी मुमुक्षु प्रतिक्रमण में है, आपके घर में जो भी हो रहा है सबको छोड़ के बैठ जाओ प्लीज। फोन को भी ऑफ कर दो जो दूसरा फोन नहीं यूज करने वाले प्लीज। आज हमें डैशबोर्ड नहीं ऑब्जर्व करना है प्लीज। थैंक यू। सॉरी ज्योत्सना बेन गो अहेड।
प्रतिक्रमण आमा छे।